नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का ब्रह्मा कुमारी के फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर हमारी विशेष प्रस्तुति में। नाम है सभी द चेन सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजे श्रीनिधि और पिछले 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से दोस्तों हम हर दिन आपके साथ बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत की छोटी सी कोशिश की वजह यही रही है कि हम बदलते हुए दौर में जी रहे हैं। कहा जाता है वक्त हमेशा बदलता रहता है, मगर पिछले 4-5 महीने हम सबके लिए बड़े चैलेंजिंग रहे हैं, कुछ लोगों के लिए टेस्टिंग टाइम्स रहे हैं और इस बदलते वक्त में हमने अपने आप को बदलने की, अपने आप को ढालने की अलग अलग प्रयास किए हैं। तो आइए, इस प्रयास में हम कुछ नई चीजें कर रहे हैं तो वहां मुश्किलों का जब सामना होता है तो हम अक्सर देखते हैं कि हम मदद किससे मांगे, और ब्रह्मा कुमारी की छोटी सी पहल रही है कि इस बदलाव के वक्त में हम आपको वो गाइडेंस ऑफर कर सकें, वो स्पिरिचुअल विजडम ऑफर कर सकें जिससे आप इस बदलाव को बेहतर तरीके से डील कर सकें। ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहने हमारे साथ मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन बनकर हर दिन जुड़ते हैं और हमारे प्रश्नों का, हमारे सवालों का, अगर हमें कहीं परेशानियां हैं तो उन परेशानियों के लिए गाइडेंस देते हुए मार्गदर्शन करते हैं। आज भी हमारे साथ एक ऐसे ही मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर कला अयंगार जी जुड़े हैं जो निदेशिका हैं ब्रह्मा कुमारी के पीस विलेज लर्निंग एंड रिट्रीट सेंटर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स से। अनेकों दशकों से डॉक्टर कला ने भारत और भारत के बाहर अनेकों देशों में आध्यात्म की इस अलग को जगाए रखने की, अनेकों लोगों के जीवन में एक सकारात्मक और एक पॉजिटिव चेंज लाने की दिशा में एक कैटलिस्ट का काम किया है। हजारों लोगों ने उनके मार्गदर्शन में अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाने का और उन्हें स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करने का अनुभव लिया है। आज दीदी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सबकी तरफ से डॉक्टर कला का स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द शो डॉक्टर कला।
बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सभी व्यूअर्स को। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ होने का और कुछ बातचीत लेन देन करने का, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड।
थैंक यू दीदी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ चुके हैं तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। यू कैन टाइप इन योर क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट्स पे, जहां पर भी आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं, वहां ही इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स में अपने सवाल टाइप इन कीजिए और आपके सवाल को हम फीड से लेंगे और यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो सवाल आपको स्क्रीन पे भी देखने को मिलेगा और मैं पढ़ के दीदी से इसके लिए मार्गदर्शन लूंगा। अगर आपको लगता है आपके मन में कोई सवाल नहीं है बट आप सिर्फ कुछ शेयर करना चाहते हैं, जस्ट अबाउट हाउ यू फीलिंग टुडे, कैसा आप अंदर महसूस कर रहे हैं, कोई ख्याल है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर इफ यू वांट टू जस्ट गिव अस अ शाउट आउट यू कैन आल्सो डू दैट एंड वी विल आल्सो शो दैट ऑन द स्क्रीन। चलिए शुरुआत करते हैं। हर दिन हमारे साथ दोस्त जो जुड़ते हैं उनके सभी के सवाल 1 घंटे में ले पाना मुश्किल होता है। कुछ दोस्तों के सवाल हर दिन रह जाते हैं तो ऐसे कुछ सवालों से मैं आज की कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर कला, कल हमारे साथ अनन्या सेन जी जुड़े थे और वो प्रश्न पूछते थे कि आई एम प्रैक्टिसिंग राजयोग मेडिटेशन फॉर मोर देन 3 मंथ्स नाउ। आई फेल्ट पावरफुल, पीसफुल एंड अवेयर इन द प्रेजेंट सिचुएशन बट आई डिडंट विजुअलाइज एनीथिंग टिल नाउ। इज दैट ओके? एम आई ऑन द राइट वे? अनन्या का प्रश्न इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे दोस्तों ने इन इस लॉकडाउन के महीनों में ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्सेज किए हैं, राजयोग मेडिटेशन के साथ उनका नया इंट्रोडक्शन हुआ है। सो वो कहती हैं कि वो 3 महीने से कोशिश कर रही हैं और राजयोग मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रही हैं। वो पावरफुल महसूस करती हैं, पीसफुल महसूस करती है, बट वो कहती हैं कि उनको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ ऐसा कलरफुल या मेडिटेटिव टाइप विजुअलाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं होता। इज दैट ओके? क्या मैं ठीक कर रही हूँ, ऐसा पूछती हैं अनन्या।
तो अनन्या, आपका सवाल सबकी तरफ से है, राइट? आप सिर्फ एक की नहीं है और बहुत सच्चे दिल से आपने ये सवाल की है क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि सही रास्ते पे हैं, सही विधि अपना रहे हैं, सब ठीक कर रहे हैं। और मैं तो अपने अनुभव से हमारे राजयोग की जो शिक्षाएं, प्रैक्टिसेस के जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके भी अनुभव के हिसाब से यही कहूंगी कि ये जो मेडिटेशन है काफी डिफरेंट है और अन्य मेडिटेशंस की जो विधि होती है, और ये मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी गलत फहमी है कि मेडिटेशन में जब बैठते हैं तो या तो कुछ दिखाई देना चाहिए या तो कुछ सुनाई देना चाहिए या तो एकदम मन सूना हो जाना चाहिए, ये सब मैं समझती हूँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। लेकिन राजयोग की मेडिटेशन में कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कुछ दिखाई दे। हम बुद्धि से समझते हैं, जो ज्ञान हमें मिलता है वो बुद्धि से हम समझते हैं सचमुच मैं जैसे कि एक आत्मा हूँ, स्टार मिसल आत्मा हूँ। अभी बुद्धि से समझना और आंखों से देखना वो दो चीजें हैं। अगर जो आंखों से देखा तो अच्छा भी है, उससे मदद मिल सकती है, लेकिन आंखों से देखना ही सब कुछ नहीं है। और अगर आंखों से नहीं भी देखा, विजन नहीं भी किया, विजुअलाइज नहीं भी कर सकते हैं, तो भी बुद्धि से समझ लिया कि मैं इतनी सूक्ष्म शक्ति हूँ, इतनी लाइट स्वरूप हूँ, तो उसकी फीलिंग आपको अलग सी आएंगी। जैसे कि मैं शांत स्वरूप हूँ, उसकी कोई इमेज तो नहीं है ना, शांत स्वरूप माना कि शांत हूँ, वो जैसे कि एक अनुभव है, आंतरिक अनुभव है, उसमें देखने करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप जो भी कर रहे हो इतना जरूर ध्यान रहे आपके कि आपकी जो आत्मा के प्रति या जो भी आप गुण समझते हैं आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटीज हैं वो आपको अनुभव हो रहे हैं। माना कि थोड़ी सी जैसे ड्रॉप बाय ड्रॉप मेक्स द ओशन कहते हैं ना, तो एक एक बूंद करके एक संकल्प आपने कर सके कि मैं ऐसी शांत आत्मा हूँ, ऐसे प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और पहले तो आपको वो भी अनुभव नहीं होगा, नहीं सिर्फ मुख से ही कहेंगे या मन से ही संकल्प रिपीट करेंगे, लेकिन करते करते वो बात आपको इतनी जच जाएगी कि मैं सचमुच यही हूँ, तो उस समय आपको ये अनुभव होने लगेगा। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आंखों से देखने का इतना इम्पोर्टेंस हम लोग नहीं देते हैं। भले विजुअलाइज हम शब्द भी यूज करेंगे, लेकिन अगर नहीं दिखाई दिया तो उसमें कोई बात नहीं। सिर्फ बुद्धि से समझ करके उसकी सूक्ष्मता में जाना है, उसके अनुभव में जाना है। इसलिए आप बिल्कुल राइट रास्ते पर हो, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अलग अलग रीति से आत्मा को कैसे मैं अनुभव करूं, परमात्मा के साथ जो मेरा संबंध है वो कैसे अनुभव करूं। और ये भी जरूरी है कि कभी कभी लोगों के मन में परमात्मा के बारे में कुछ न कुछ बातें बैठी हुई है, मूर्ति बैठी हुई है, अगर उसका भी स्वरूप सामने आए कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो परमात्मा ज्योति स्वरूप है बुद्धि से समझ करके उनके साथ बातचीत लेन देन करते 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 एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको लगेगा कि सचमुच मैं आत्मा परमात्मा के इतनी क्लोज आत्मा हूँ, इतनी बहुत जैसे कि प्यारी आत्मा हूँ, वो मुझे प्यार कर रहे हैं, मुझे भी इतना प्यार हो रहा है उनसे। तो ये सब अनुभव ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो विजन्स की कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है ना?
ठीक, बहुत ही अच्छी बात आपने कही दीदी, और मैं समझता हूँ बहुत सारे दोस्त भी इस चीज को पूछना चाहते होंगे और उनके भी सवाल ये ठीक हो गए हैं, क्योंकि हम जब कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कोई नई चीज हो रही होती, तो हमें पता नहीं होता है कि आर डूइंग इट राइट और नॉट। बट वेरी नाइस। यूट्यूब से हमारे एक दोस्त लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं, नाम है इनका कीर्ति, और कीर्ति सवाल पूछती हैं। माय क्वेश्चन इज, देयर इज अ सेइंग दैट यू शुडंट थिंक अबाउट फ्यूचर, बी इन द प्रेजेंट। अनदर थिंग इज प्लान अबाउट टुमारो, हाउ योर डे इज और हाउ इट शुड बी, व्हाट इज द डिफरेंस। कीर्ति जी का प्रश्न बड़ा मजेदार है। वो कहती हैं कि ये कहा जाता है कि आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहिए, यू शुड लिव इन द प्रेजेंट, और साथ में ये भी कहा जाता है कि तुम्हें अपने कल के बारे में प्लान बना के रखना चाहिए कि मेरा कल कैसा होना चाहिए, उसको प्लान करना चाहिए। तो दोनों में क्या चीज सही है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ऐसा पूछती है कीर्ति
जी। जी, बहुत ही अच्छी बात पूछी आपने कीर्ति भाई। और हम तो समझते हैं कि ये जो मार्ग है ना, राजयोग का मार्ग जिसे कहते हैं, या उसकी विधि टेक्निक जिसको कहते हैं, उसकी रिजल्ट भी जो आती है, तो मैंने हमेशा देखा है कि ये बैलेंस वाला मार्ग है। देर आर लॉट ऑफ ऑपोजिट्स दैट वी हैव टू बैलेंस। तो इसमें भी ऐसे भी एक चीज है जिसके लिए हम कहते हैं कि प्लान तो जरूर करेगा ही, क्योंकि हमारे इतनी डेवलप्ड बुद्धि है, तो डेफिनेटली कुछ न कुछ बातें सोचेंगे, रियल करने के लिए, प्रैक्टिकल में लाने के लिए प्लानिंग जरूर करेंगे। लेकिन प्लानिंग करने के बाद क्या, प्लानिंग करने के बाद क्या, तो कभी कभी क्या होता है, प्लान करके उसमें एकदम जैसे कि स्टक हो जाते हैं, जैसे कि लिमिटेड हो जाते हैं, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर जो वो प्लान ठीक नहीं हुआ, उसी रास्ते पर किसी ने नहीं हमको जवाब दिया, या हमको खुद लगा कि ये प्लान वर्क नहीं कर रहा है, तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, या तो उसी के यू नो टू मच थिंकिंग जैसे कि हो जाता है। लेकिन हम फिर उसके साथ प्लानिंग के साथ दूसरा भी शब्द यूज करते हैं कि अपने को प्लेन भी रखो, प्लेन भी रखो। प्लेन क्या होता है कि जैसे कि साफ कोई पेपर होता है ना, उसके ऊपर आप लिख सकते हो, यू नो स्लेट होता है तो उसके ऊपर आप लिख सकते हो, भले आपकी प्लान थी। और प्लान को प्रैक्टिकल लाने में जो जो बातें, जो जो स्टेप्स आपको सामने आती है, वो समय अनुसार आप लिख सकते हो। यू आर नॉट टू फिक्स्ड ऑन योर आइडियाज। तो कहने का मतलब है कि डेफिनेटली आज के आदमी का मेन प्रॉब्लम, हम कहते हैं या तो पास्ट में रहते हैं या तो फ्यूचर का सोचते रहते हैं, प्रेजेंट का लाभ पूरा नहीं उठा सकते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि हम बिल्कुल ही भविष्य का नहीं सोचें, जरूर सोचेंगे, और जितना हो सके हमारे नॉलेज के आधार से, हमारे अनुभव के आधार से, हमारे एक्सपीरियंसेस के आधार से, हम कुछ न कुछ तो जरूर अपने लिए एम रखेंगे, भविष्य के लिए प्लान भी करेंगे उसके लिए। लेकिन उस प्लान को हम ऐसे जैसे मुट्ठी में पकड़ के रखा है और यू नो नहीं छोड़ सकते ना, ऐसे भी नहीं करेंगे। लेट गो करने की भी उसके साथ साथ एबिलिटी चाहिए, और वो आता है अपने को प्लेन रखने से। क्योंकि हम मानते हैं कि दुनिया में कई चीजें हैं आजकल जो हमारे बस की बात नहीं है, वी आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ द टोटल सिचुएशन। तो फिर एकदम डिसअपॉइंट होने से तो और ही खराब हो जाता है, जो भी प्लान किया प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। इसलिए दोनों की जरूरत है, और जिस घड़ी जो करना चाहिए वो करना चाहिए। यू नो अगर मैं आज कहूँ कि 10 दिन के बाद यू नो मुझे एक यू नो थोड़ा कुछ कहीं जाना है, उसके बारे में अभी मैं प्लान करने लगूं, तो आई वुड से इट इज वेस्ट ऑफ टाइम, राइट? मतलब कि यू नो इफ इट इज नॉट वॉरंटिंग, इतना कुछ प्लान करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी से मैं प्लान करूं, सोचते रहूं, फिर वो भी वेस्ट ऑफ एनर्जी, मेंटल एनर्जी हो जाता है। इसलिए जितना जब सोचना हो डेफिनेटली सोचे, और कई चीजें ऐसी होती है प्लानिंग करने की जरूरत है, जितनी बड़ी संस्था, जितनी बड़ी प्रोजेक्ट, जितनी बड़े कार्य, प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम देखते भी हैं कि जितना प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी जितना प्लान कर रही है वो भी नहीं कर पाती है, क्योंकि अनेक सिचुएशंस बीच में आ जाती है, फैमिन आ जाती है, फ्लड्स आ जाती है, ये आ जाती है। तो उस समय क्या करना चाहिए, एवर रेडी भी रहना चाहिए। वो एवर रेडी भी तब रह सकेंगे जब अपने को थोड़ा सा हल्का छोड़ेंगे, लेट गो करेंगे, प्लेन रखेंगे, तभी हमारी सब एबिलिटीज वर्क कर सकेंगे। क्या सोचना, क्या निर्णय करना, हाँ कैसे जज करना, वो सब एबिलिटीज हमारे काम कर सकेंगे। तो दोनों जरूर सोचिए, और सोचने के साथ साथ थोड़ा सा हल्का भी छोड़िए, अपने को लाइट भी रखिए। अच्छा,
बहुत ही सुंदर सी बात आपने कही दीदी कि प्लान करना आवश्यक है, बट उसी चीज को कॉन्स्टेंटली करते रहना भी सही नहीं है। अगर वो थोड़ा डिस्टेंस फ्यूचर में है, वो कोई दूर की बात है, तो उसको वहीं रहने देना चाहिए, अभी से उसके बारे में नहीं सोचना है। और जैसे आपने कहा, प्रेजेंट मोमेंट में रहना इम्पोर्टेंट है, बट इसका मतलब प्लान करना नहीं है, ये नहीं है। प्लानिंग इम्पोर्टेंट है, बट कॉन्स्टेंट थिंकिंग नहीं होना चाहिए। एक और दोस्त हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हैं, नाम है इनका मेघा, और मेघा जी प्रश्न पूछती है, क्या मानसिक कष्ट प्रारब्ध से जुड़ा हुआ होता है? ये सवाल मैं समझता हूँ कुछ ये नए एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के मेडिटेशन के साथ, और नए से ये लोग स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें समझ में नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या क्यों नहीं हो रहा है। तो ऐसी चीजों के लिए अक्सर ये कहा जाता है, भाई तुम्हारी किस्मत है, तुमने कभी ऐसे कर्म किए होंगे, ऐसे सुनने को मिल जाता है। तो ऐसे ही कोई मेंटल कष्ट है, मेंटल पेन है जो हम सफर कर रहे हैं, तो क्या ये भी प्रारब्ध से या कर्म से जुड़ा हुआ होता है, ऐसा पूछते हैं मेघा।
मेघा जी, आपका भी प्रश्न अपने अकेले का प्रश्न नहीं है, सभी का प्रश्न ये उतरता है। वैसे तो हम जो भारत में पले हुए हैं, भारत में जन्मे हुए हैं, उनको कर्म के फिलॉसफी का तो है ही कुछ न कुछ ज्ञान, और निश्चय भी बैठा हुआ है, श्रद्धा भी है। लेकिन फिर भी यूजुअली जब कहते हैं कि किसी को कष्ट होता है तो हम हमेशा शारीरिक चीजों का ख्याल करते हैं, उसको बीमारी हुई, उसके पैसे ऐसे गुम हो गए, उसको कुछ न कुछ कष्ट हुआ, किसी के साथ बना नहीं, ऐसे ऐसी चीजों का हम ख्याल करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हर एक चीज का जो संबंध है मन के साथ है, और मन को हमने कई सालों से कई युगों से मैं समझती हूँ कि हमने निग्लेक्ट किया हुआ है। माना कि मन की अवस्था का हमने बहुत ख्याल नहीं किया। बाहर रूपी से तो हमने बहुत ख्याल किया कि मेरा कर्म अच्छा हो, हॉस्पिटल बांधे, मंदिर बांधे, कोई न कोई गरीबों को खाना खिला दे, ये सब तो हुआ ही है। लेकिन मानसिक रीति से हमने आप अपने आप के स्वमान में नहीं रहे कि जैसे मैं होना चाहती हूँ, जैसे कि मैं हम हमेशा यहाँ पर सीखते हैं कि मैं आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के अपने बारे में सोचूं तो मेरे अंदर कितने अच्छे अच्छे गुण इमर्ज होंगे, तो वो हमने थोड़ी सी भूल की है। बाहर की तरफ जो कर्म है उसके ऊपर अटेंशन ज्यादा दिया, और अंदर जो मनसा से मन और बुद्धि से जो कर्म बनते हैं उसके ऊपर थोड़ा अटेंशन कम दिया, और उसकी वजह से क्या हो रहा है आज कि मानसिक कष्ट जिसको कहते हैं, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं, एकदम निराशा ही आ जाती है, कोई कारण बिगैर डर लगता है, टू मच एंग्शियस हो जाते हैं, मानसिक कष्ट जिसको कहते हैं, या ऑब्सेसिव हो जाते हैं, कई तरह की बीमारियां हैं जो अपने मन को ठीक न रखा और मन से ऐसे ऐसे कर्म होने दिया जो हमको भी दुख पहुंचाने लगे और दूसरों को भी दुख पहुंचाने लगे। इसलिए मैं समझती हूँ जरूर आपकी बात सच्ची है कि मानसिक कष्ट भी जो हम आजकल अनुभव कर रहे हैं प्रारब्ध माना कि हमारे कर्मों का रिजल्ट है। उसमें हम सोचेंगे कि हमने तो ऐसा कुछ कर्म नहीं किया, मेरे को क्यों ऐसा होता है, और हमने भी ऐसे यही सोचा, पहले तो हम यही सोचते थे कि हमने तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया, हमारे साथ ऐसे क्यों होता है। लेकिन फिर हमको जब समझ में आए कि हमारी थिंकिंग की जो बेसलाइन थी ना वो ही जुदी थी, जैसे कि हमारी थिंकिंग की बेसलाइन ये थी पहले कि मैं ये शरीर आइडेंटिटी है मेरा, उसको थमाना है, उसको बढ़ाना है, शरीर के साथ जो संबंधी है उसको ठीक रखना है, और सबकी सस्टेनेंस के लिए मैं निमित्त बनूं, ऐसे ऐसे सोचते थे। लेकिन हमारी अभी थिंकिंग की जो बेसलाइन है ना वो इस रूप में हो जाती है कि मैं एक आत्मा हूं, मेरा सच्चा सच्चा आत्मिक स्वरूप है, मैं लाइट हूँ, अविनाशी हूँ, कोई मुझे कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मुझे कोई डरने की बात नहीं है, और मेरे से अंदर से भी शांति की फीलिंग्स, प्रेम की फीलिंग्स, शक्ति की फीलिंग्स ऊपर आती है तो किसी को मैं उस रूप से मदद दे सकूं, ऊपर ऊपर के रूप से नहीं। पहले तो क्या करते थे, गिफ्ट भी दे देते, लेकिन अंदर में ये सोच चलता था कि फलाना कैसा है, उसने तो मेरे लिए कुछ नहीं कहा था लेकिन मुझे करना पड़ता है इसलिए मैंने किया। नेगेटिव थॉट्स चलते थे लेकिन ऊपर ऊपर से उसको पॉजिटिव से थोड़ा पॉलिश करते थे। लेकिन अभी क्या करते हैं कि अंदर की स्थिति को पहले तो ठीक से अपना थमाते हैं, अपनी शांति की अवस्था, प्रेम की अवस्था, समझौती की अवस्था, ये सब हम बढ़ाते हैं, और उसके हिसाब से फिर हमारा कर्म का जो व्यवहार होता है वो भी ठीक ठीक हो जाती है। पहले भले थोड़ा टाइम लगे उसमें, लेकिन जितना अपने लिए टाइम रखेंगे, अवस्था जमाने में हमने अटेंशन देंगे, तो धीरे धीरे देखा जाएगा कि वो दूसरों के साथ भी हमारा संबंध अच्छा हो जाता है, और मेन बात है कि हमारे खुद की प्रति जो फीलिंग्स थी ना पहले, जो पहले लोग हमेशा कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, सेल्फ कंपैशन, ये सब कम हो गई थी पहले, और कोई भी बात दूसरों के प्रति करने के पहले पहले अपने आप करना होता है। और मेन बात अभी हम सीख रहे हैं कि नहीं, वो ऐसे कर्म अभी नहीं करेंगे, पहले अपने हम जिसको सोल कॉन्शियस कहते हैं, आप लोगों ने सुना तो होगा ये वर्ड, सोल कॉन्शियस कहते हैं, आत्मिक स्थिति, पहले उसके ऊपर अटेंशन देंगे और उसके ऊपर बिल्डिंग ब्लॉक्स बनेगी कर्मों की हमारे, लेकिन फाउंडेशन हम पहले ठीक करेंगे, जिसके वजह से हमारे मानसिक कष्ट, तो क्या कई तरह के कष्ट दूर हो सकते हैं धीरे 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 करके, ठीक है ना। तो मानसिक कष्ट जरूर, यू नो, कुछ ना कुछ ऐसे हमने सोचा होगा, ऐसे हमने मनसा से किया होगा, दुख दिया होगा, या थोड़ा सा नेगेटिव किसी के बारे में, या थोड़ा सा, चलो नेगेटिव भी नहीं सोचे लेकिन वेस्ट सोचा होगा, उसके वजह से हमको काफी सारी बातों की अभी सहन करनी पड़ती है। लेकिन हमें अभी सब बातों से उपराम होकर के अपने अभ्यास को अच्छा बनाना है, जिसको हम सोल कॉन्शियस अभ्यास कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं समझती
हूँ, मैं समझता हूँ, ये एक स्पिरिचुअल आंसर भी आपने दिया कि जब हम कर्म के साथ इसको जोड़ते हैं या हमारे प्रारब्ध के साथ जोड़ते हैं, बट कॉन्शियसली एक ब्लॉक बिल्ड करना है तो हमारा फाउंडेशन क्या होना चाहिए आगे के लिए, वो भी चीज आपने बताई। एक और फ्रेंड हमारे साथ जुड़े हैं, विश्वनाथ नाम है इनका और ये फेसबुक से हमारे साथ जुड़े हैं। ये बात कहते हैं कि अक्सर जब इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब वो भगवान को याद नहीं करता, लेकिन जब उसके साथ कुछ बुरा होता है और जहां पे उसका वश नहीं चलता तभी भगवान को याद करता है। तो क्या हम मान सकते हैं कि इंसान किसी डर के कारण या जहां कमजोरी महसूस करता है वहां भगवान को खोजता है, ये कहां तक सही है? मैं समझता हूँ विश्वनाथ जी का प्रश्न बहुत सारे लोगों के लिए अदरवाइज भी अप्लाई करता है, क्योंकि ऐसे टाइम पे जब ये डिफिकल्ट टाइम्स हमारे पास अभी चल रहे हैं, ऐसे टाइम पे बहुत सारे लोगों ने स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर किया है, तो क्या ये सही है कि हम मुश्किल की घड़ियों में भगवान को खोजें या फिर अदरवाइज होना चाहिए?
बात तो आपकी बहुत सही भी है, सच्ची भी है, लेकिन अभी क्या करें, ये जैसे कि इंसान का नेचर है कि सब कुछ अच्छा चलता है तो उसी में गुम हो जाता है, और जब कोई बात नहीं होती है तो भगवान को याद करता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सोचने की बात ये भी है विश्वनाथ जी कि हम भगवान को क्यों याद करते हैं, ये क्या विशफुल थिंकिंग है कि हम भगवान को प्रार्थना करेंगे, उसके साथ बात करेंगे, याद करेंगे तो आकर के सब ठीक कर देगा? सिर्फ हमारे मन की विश है, इच्छा है, या सचमुच हमारे अंदर कोई ऐसी अनुभव समाया हुआ है पहले वाला, जन्मों पहले वाला या उससे भी पहले वाला, कभी भगवान ने हमको आकर के मदद किया हुआ था और उसकी याद हमको इतनी गहरी रह गई है अंदर में कि हम फिर से उनको याद कर रहे हैं, भले कॉन्शियस नहीं है, हमको याद नहीं है, लेकिन जो आत्मा के लिए हम कहते हैं ना, आत्मा में तो इतने गहरे संस्कार और याद भरे हुए हैं जो कभी मिटते नहीं। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि भगवान को सभी क्यों याद करें, चलो एक कोई याद करे, दो कोई याद करे, कोई कुछ याद करे, लेकिन सभी के सभी जब दुख के समय होता है तो भगवान को क्यों याद करें? इसका मतलब है कि वही भगवान, वही व्यक्ति या व्यक्ति नहीं भी समझो उसको, लेकिन वो सूक्ष्म शक्ति समझो, कोई भी समझो, लेकिन उनके साथ उनका कभी न कभी ऐसा अनुभव जरूर हुआ होगा, कभी पास के जन्मों में, कभी जन्मों के पहले भी, यू नो, ऐसा हुआ होगा कि उनको मदद किया होगा, कुछ न कुछ जो कमी थी उसको भरपूर किया होगा, अंदर में किया होगा और बाहर में भी, क्यों नहीं, तभी वो याद आता है, राइट। तो ये याद आना भी कोई, यू नो, बुरी बात तो नहीं है ना, एटलीस्ट राइट चीज को याद करते हैं, क्योंकि उनको फिर से याद करेंगे तो फिर से जो कमी है अंदर में रह गई है वो फिर से भर सकेंगे। अभी सिर्फ प्रश्न ये उठता है कि कैसी इच्छा से, कैसी भाव से, कैसी भावना से हम उनको याद करते हैं। एक होते हैं बहुत बहुत सेल्फिश होता है और मेरे को ये मिल जाए, मेरे को ये मिल जाए, उस रूप से याद करते हैं, और दूसरा होता है जो हम जानते हैं कि वो दाता है, सब कुछ देने वाला है, सिर्फ उनको याद करने से ही हमको सब कुछ मिल जाता है। तो एक तरह का याद एकदम, यू नो, निराश होकर के स्वेच्छा से वो याद करना, और दूसरा है कि हम निश्चय से याद कर रहे हैं कि हमारा साथी है भगवान, हमारा भगवान बैठा है तो हम क्यों चिंता करें, उस तरीके से याद करना। तो जरूरी है, जरूर ये बात अच्छी बताई आपने कि दुख में हमने भगवान को शुरू किया याद करना, जब सुख में थे तो नहीं याद किया, और ठीक था क्योंकि भगवान की दी हुई सब चीजें हमारे पास थी, एंजॉय किया हमने, बहुत सुख उठाया उसमें से। ये भी प्रकृति का एक नियम है ना, जब सब कुछ मिलता है तो क्यों मिलता है, हमारे सुख के लिए मिलता है, उन्हें सुख ले भी, लेकिन जब सुख धीरे धीरे कम हो जाता है तो दुख के समय पर वो याद आता है जिसने हमको सुख दी पहले। तो ये सुख दुख का खेल हम समझते हैं कि चलता रहता है, और अभी वो समय आया हुआ है जबकि हम दुख से इतने हारे हुए हैं और दुख में याद करके करके भी इतने हारे हुए हैं कि हमको पता नहीं चलता कि कैसे अभी आगे का क्या रास्ता है। और तभी का समय ऐसा आता है कि हमको फिर से सही रास्ता बताने के लिए या जागृत करने के लिए कि सही याद क्या होती है, उसके लिए हम समझते हैं कि थोड़ा सा भगवान का प्रैक्टिकल में पार्ट बजाना जरूरी होता है। और हम ब्रह्मा कुमारी से ये भी मानते हैं कि वो पार्ट का समय अभी चल रहा है जिससे कि वो प्योर जो हमारी मेमोरीज हैं वो फिर से जागृत हो जाए, जैसे कि अभी अभी फिर से हमको वही सुख, वही खुशी, वही शांति फिर से मिल रहे हैं, ऐसा अनुभव फिर से हम करें। सिर्फ याद करने के लिए नहीं, मांगने के लिए नहीं, लेकिन पाने के लिए, पाने की अनुभूति हो, ये है हमारी याद की अभी विधि जिसको हम राजयोग कहते हैं। ठीक है,
बहुत ही शुक्रिया दीदी। एक और हमारे यंग फ्रेंड हैं और वो YouTube से प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, और वो प्रश्न पूछते हैं कि अगर किसी को शराब की आदत है तो उसे छोड़ने का उपाय क्या है, ऐसा पूछते हैं विजू।
इसके ऊपर मेरे को एक याद आता है, हमको जो हमेशा एग्जाम्पल दी जाती है, छोटा बच्चा होता है और उसके हाथ में चाकू होता है, जानते हैं कि उसको मालूम नहीं है चाकू कैसे यूज करना, और कहीं भी यूज कर सकता है, किसी को भी लग सकता है, वो खुद को भी लग सकता है, तो माँ क्या करेगी उसको, और उससे लड़ाई भी नहीं कर सकती है क्योंकि जितना जोर लगाएंगे उसको फिर और भी लगेगा कि और उससे और भी नुकसान हो सकता है, इसलिए वो हल्के से रूप में वो क्या ले गई, वो बहुत अच्छा एक खिलौना लेके आएगी जो उस लड़के को पसंद है, बच्चे को पसंद है, और उसको बताएगी देखो बेटा, देखो बेटा, और वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, चाकू को छोड़ देगा। कहने का मतलब है कि हमने दारू क्यों शुरू की, क्योंकि अंदर में कुछ न कुछ हमारे में कमी महसूस होती थी, एम्प्टीनेस कहो, खालीपन कहो, कमी कहो, कमजोरी कहो, अपने प्रति कोई स्वमान की बात, कमी हमने महसूस की, किसी ने हमको धोखा दे दिया, किसी ने दुख दे दिया, दूसरों के ऊपर जुल्म जरूर लगाया, लेकिन हमने अपने आप को नहीं संभाला, अपने आप को नहीं समझा कि स्वमान, प्यार, ये सब तो हमको खुद को देने की जरूरत है, तो वो नहीं दिया ना। इसलिए मैं तो यही समझूंगी कि समझती हूँ कि कईयों को ये बहुत ही मतलब कि कड़ी बीमारी होती है, जैसे कि टू मच एक्सट्रीम में गया हुआ होता है, और उसके लिए तो सेंटर्स बने हुए होते हैं, खास उनकी प्रोफेशनल्स होते हैं डी एडिक्शन के लिए, लेकिन हमारे पास जो हमारे अनुभव से मैं ये भी कह सकती हूँ, कई हैं जो इस मार्ग में या राजयोग के मार्ग में आए हुए, थोड़ा सा भी शुरुआत की, थोड़ा सा भी उनको पहचान मिला कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, मैं सचमुच एक आइडेंटिटी जो मेरी कमी रह गई थी ना, वो आइडेंटिटी को मैंने जान लिया कि मैं सचमुच ऐसी आत्मा हूँ, और मुझे हेल्प करने वाला कौन है, मेरा सब कुछ देने वाला कौन है जिसके पास मैं जा सकूं, बोल भी सकूं कि मेरे क्या प्रॉब्लम्स है, कोई समझने वाला तो नहीं है, सभी यही सोचेंगे कि ये तो दारू पीता है, ये तो वो करता है, इसलिए इसको छोड़ दो, ये तो कभी सुधरने वाला नहीं है, उसको छोड़ दो, लेकिन एक जरूर ऐसा है जो जिसको हम परम आत्मा मानते हैं, आत्मा के पिता मानते हैं, आत्मा का फ्रेंड मानते हैं, आत्मा का डॉक्टर मानते हैं, प्रोफेशनल भी है वो परमात्मा, उनको हर तरह की चीज का मालूम होता है कि किस आत्मा को क्या चाहिए। सिर्फ क्या करना होता है, हमको एक छोटा सा फर्स्ट स्टेप लेना होता है कि आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। एक छोटा सा आप संकल्प करो, उसके बदले में आप देखो कि परमात्मा की रिटर्न ब्लेसिंग्स के रूप में, हेल्प के रूप में, शक्तियों के रूप में कितना कुछ आपको प्राप्त हो सकता है। थोड़ी सी हमको विधि का पता होना चाहिए कि क्या कैसे कैसे उसके साथ लेन देन करें। लेकिन मैंने तो यही देखा है कि अगर कुछ दूसरे भी ट्रीटमेंट कर भी रहे हो, लेकिन उसके एडिशन में ये राजयोग की शिक्षा जरूर लें, प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि कईयों की काफी एडवांस्ड हो गई होती है एडिक्शंस वगैरह, लेकिन शुरुआत में अगर आपकी ये बीमारी है या थोड़ी सी आदत पड़ गई है तो मैं जरूर समझूंगी कि कुछ न कुछ तरीके से, अभी तो ऑनलाइन भी कितनी क्लासेस वगैरह चल रही है ना, तो थोड़ा सा अपना परिचय ले लो कि मैं कौन हूँ। उसमें क्या है कि उसका अनुभव से स्वमान बढ़ेगा, स्वमान की कमी से ही ये सब एडिक्शंस होते हैं। किसी न किसी चीज से हम कनेक्ट हो जाते हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई कर देते हैं और उसके बगैर फिर चल नहीं सकते। एडिक्शन क्या है, उसके साथ इतना ओवर अटैचमेंट, ओवर आइडेंटिफिकेशन, राइट, या तो कोई वस्तु से, या तो कोई व्यक्ति से, या तो कोई वैभव से, ओवर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो एडिक्शन हो जाता है। इसके बिना तो कल चल नहीं सकते। शॉपिंग करने का एडिक्शन हो जाता है, उसके बिना मैं रह नहीं सकती हूँ, छोटी छोटी बातों में एडिक्शन हो जाती है। तो ये तो थोड़ी ज्यादा नुकसानकारक है, तो अल्कोहल का इतना बड़ा वो हो गया है, और ख्याल करना भी चाहिए क्योंकि व्हाई शुड आई हार्म माई सेल्फ, व्हाई शुड आई नॉट रिस्पेक्ट माई सेल्फ इनफ, व्हाई शुड आई नॉट लव माई सेल्फ इनफ कि मैं अपने आप को मदद कर सकूं। और अगर मैं अपने को मदद करने के लिए तैयार रहूं तो मेरा साथी भगवान, मेरा सर्जन भगवान, मेरा फ्रेंड भगवान, वो शामिल है ही, कुछ न कुछ रूप से, कुछ न कुछ रास्ते से वो आपको मदद करते रहेंगे। सो प्लीज प्लीज थिंक अबाउट योरसेल्फ, और जो भी अगर आपने मेडिटेशन शुरू की है तो जरूर जारी रखिए, और अगर नहीं शुरू की है तो जरूर कुछ न कुछ रूप से उसका परिचय लीजिए कि कैसे, खास करके राजयोग मेडिटेशन की मैं बात करती हूँ। वैसे तो कोई भी मेडिटेशन करो उसमें आंतरिक अनुभव बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन खास करके राजयोग में ये विशेषता है कि परमात्मा का हेल्प हम ले सकते हैं डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा, तो ये जरूर याद रखना।
जी बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने सिर्फ अल्कोहल ही नहीं बल्कि दूसरे एडिक्शन के बारे में भी ये चीज बताई, और अपने आप को याद दिलाना कि मेरी वैल्यू क्या है, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ और मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये याद दिलाने से अंदर बहुत ज्यादा बल मिलता है कि हम एडिक्शन को डील कर सकें। कुछ दोस्त नए से मेडिटेशन करना सीख भी रहे हैं और कुछ लोग नए नए प्रयास कर रहे हैं इसमें। पूजा हमारे साथ जुड़े हैं यूट्यूब से और वो प्रोग्राम लाइव देख रहे हैं और पूछती हैं, आई स्टार्टेड माई मॉर्निंग मेडिटेशन विद अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट बट आफ्टर फ्यू डेज माई एक्साइटमेंट केम डाउन, हाउ टू कीप अप दैट। मैं समझता हूँ ये बहुतों के साथ हो रहा है। हम आरंभ शुरू होते हैं, मतलब जो शुरू होते हैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ शुरू करते हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे कम होता जाता है, फिजल्स डाउन। तो कैसे हम मॉर्निंग मेडिटेशन के प्रति अपना कमिटमेंट या वो जो चीज है उसको हम परमानेंट बना के रखें, हाउ डू वी कीप अप दैट एक्साइटमेंट। पूजा,
हाँ जी, ओम शांति। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस के आपने शुरू की है पूजा जी, कि दिस इज बेटर देन स्टार्टिंग, नॉट स्टार्टिंग एट ऑल नहीं। तो मैं समझती हूँ कि आप कोई भी मेडिटेशन करो उसमें कुछ न कुछ विधि तो होंगी, तो पहले तो उस विधि को ठीक से फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो थोड़ी सी रीचेकिंग करनी पड़ती है, रिकैलिब्रेट करनी पड़ती है थोड़े दिन के बाद। लेकिन मैं थोड़े शब्दों में ये कहूंगी कि हमारी जो बिगिनर्स हैं राजयोग मेडिटेशन के, हमारे हम उनको तीन चार स्टेप्स, सिंपल स्टेप्स हम उनको बताते हैं। और पहली बात तो ये है कि ये जो दुनिया है स्थूल बातों की, बिल्कुल मामूली सी बातों की, ऑर्डिनरी बातों से भरी हुई, अपनी अपने मन बुद्धि को हमने बहुत फुल कर दिया है ना, तो मेडिटेशन वो समय है जबकि हम थोड़ी सी उन सब चीजों से अपने को दूर कर सकते हैं। जस्ट लुक एट इट एज जस्ट विथड्रॉइंग फ्रॉम एवरीथिंग। जैसे कि कोई भी बात मेरे को अभी न देखनी है न सुननी है, 5 मिनट का हो 10 मिनट का हो, लेकिन ये मेरा टाइम है। वो तो सबको अच्छा लगेगा, उसमें कोई बोर्डम की बात नहीं, नहीं एक्साइटमेंट भी है उसमें, क्योंकि मैं मेरा टाइम यूज करूं, कोई मेरे पास नहीं आए, कोई मेरे कमरे में नहीं आए, ये तो कितनी अच्छी बात होती है ना। तो एक तो विड्रॉ करूं हर एक चीज से, चाहे अपने काम से, अपने लोगों से, अपने संबंधों से, मेरे प्रोजेक्ट से, कुछ भी, सब बातों से जैसे विड्रॉ करके मैं अंदर के, अभी तो आप जानते भी होंगे शायद आत्मा के बारे में, आत्मा की शक्तियों के बारे में, आत्मा के गुणों के बारे में, आत्मा के किसी के भी बारे में। तो कोई भी आप थीम उठा लो, कोई भी टॉपिक उठा लो, अपने खुद की टॉपिक, मैं समझती हूँ कई लोग जो मेडिटेशन करते हैं या तो कमेंट्री पे करते हैं या तो कुछ गीत पे करते हैं या तो कोई साइलेंस में बिल्कुल बैठ जाते हैं और पता नहीं क्या होता है फिर, लेकिन कुछ टॉपिक, कुछ विशेष एम रखो, उसके ऊपर मेरे को सोचना है। मेडिटेशन नाम भी नहीं यूज करो, मेडिटेशन तो जैसे सुनते ही कभी कभी जैसे ना ब्लॉक हो जाता है ब्रेन कईयों को, तो मेडिटेशन नाम भी नहीं यूज करे, लेकिन मैं जो मेरे संकल्प को, थॉट्स को डायरेक्शन दे रही हूँ, वो दूसरी डायरेक्शन दे रही हूँ, दूसरी चीजों को मैं याद कर रही हूँ, अंदर की दुनिया की चीजों को याद कर रही हूँ, बाहर की दुनिया को छोड़ करके अंदर की चीजों के प्रति मैं यूज कर रही हूँ। चलो समझो कि आपने कुछ अच्छी चीज देखी, बहुत ब्यूटीफुल चीज देखी, वो आपको ये याद दिलाए, वो तो ब्यूटीफुल है, लेकिन मेरे अंदर में कोई ऐसी ब्यूटीफुल चीज है? बाहर की हर एक चीज को आप उठा करके उसको ही अंदर के उसमें अनुभव में ट्रांसफर करो, जरा कि मोमेंट टू मोमेंट आप कंट्रोल कर रहे हो अपने थॉट्स को, कोई कमेंट्री रिकॉर्ड, कोई वातावरण वो नहीं, लेकिन आप अपने बुद्धि से निर्णय कर रहे हो कि अभी मुझे अंदर के बारे में सोचना है, मेरे शांति के गुण के बारे में सोचना है, या परमात्मा के साथ मेरा जो संबंध है उसके बारे में सोचना है। बिल्कुल ओरिजिनल आप सोचो, क्योंकि कभी कभी एकदम रूटीन में चलते हैं, सेम शब्द सुनते रहते हैं, सेम गीत सुनते रहते हैं, सेम रूम में बैठे हुए होते हैं, तो भी उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए कभी कभी बाहर, कभी कभी अभी तो इतना बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन ऐसे नेचर में ज्यादा मजा आता है ना, ओपन में ज्यादा मजा आता है, इसलिए हम ये कहेंगे कि मेन चीज जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ज्ञान के पॉइंट्स हैं, वो तो है ही, लेकिन उसको किस रूप से हमको, किस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज करना है, वो जैसे कि एक खेल समझकर अपने आस साथ खेलो, अपने मन से बुद्धि से खेलो, जैसे कि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। इसलिए और मैं समझती हूँ कि आपके व्यक्तिगत भी कोई टीचर होंगे या कोई किसी के साथ आप संपर्क रख सकते हैं जो आपको और भी गाइड कर सकते हैं, या तो मैं ये भी कहूँ कि कभी कभी मेडिटेशन के पहले थोड़ी अच्छी चीज कोई पढ़ के फिर बैठो मेडिटेशन करने, बहुत गुड थॉट्स होते हैं ना, कितने सारे बुक्स हैं, कितने सारे थॉट फॉर द डे आते हैं, कितने सारे इंस्पायरिंग थॉट्स मिलते हैं, लेकिन वो सब थॉट्स जो मोबाइल पे आते हैं पढ़ के छोड़ नहीं देना है आते ही है ना, रोज कितने भेजते होंगे लोग एक दूसरे को, तो उसको भी आप पकड़ के रखो कि इसका क्या मतलब होता है और मेरे लाइफ में ये कैसा लगता है, हाउ कैन आई अप्लाई दिस टू माई ओन सेल्फ। तो ये जैसे कि ना जीवन जीने का एक तरीका समझो, सिर्फ एक टाइम नहीं जो मेडिटेशन में बैठ के मैं मेडिटेशन सीखूं, नहीं, लेकिन सारा ही टाइम मेरे क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसे चल रहे हैं, इनके ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे तो जब बैठेंगे तो आपको मजा आएगा, राइट? दोनों का कनेक्शन जरूर है। इसलिए
बहुत ही सुंदर बात आपने कही दीदी कि मेडिटेशन के लिए ये भी किया जाना एक पॉजिटिव वे हो सकता है कि आप कुछ पॉजिटिव पहले पढ़ लें, जिससे मेडिटेशन करना भी आपके लिए आसान हो। हमारे एक यंग फ्रेंड है, फेसबुक से जुड़े हैं, नाम है इनका जसपाल, और ये प्रश्न पूछते हैं। मैं समझता हूँ किसके लिए पूछ रहे हैं, मैं नहीं जानता, बट ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन। वो कहते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो इंसान में गुस्सा ज्यादा पनपने लगता है और बात बात पर टोकना, क्या ये नॉर्मल है 50 to 60 इयर्स ओल्ड मैन, ऐसे ये पूछते हैं। जसपाल, इवन दो आप मेंशन नहीं कर रहे हैं तो इट इज ऑल राइट, मतलब ऐसा बहुत बार आप घर में या फैमिली में फील करते होंगे ऐसा, बट थैंक यू फॉर पुटिंग इन दोस इन जसपाल।
जसपाल जी, अच्छा, पता नहीं आप किस अनुभव के आधार से या किस बैकग्राउंड के आधार से कर रहे हैं ये बात कह रहे हैं, लेकिन हमने सोचा है, देखा भी है कि कई फैमिलीज में ये सच्ची है, दैट कोई भी बात को आप बचपन में थोड़ा सा चेक इन नहीं करेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर काबू नहीं डालेंगे और कोई भी बात के ऊपर आपका अटेंशन नहीं जाएगा और उसको बढ़ने देंगे तो नेचुरल बात है कि वो बढ़ जाएगी उम्र पर। लेकिन आपने जो बताया ना नॉर्मल है वो मेरे को थोड़ा सा उसके ऊपर अंडरलाइन करना है कि आजकल क्या हुआ है कि कई बातों में गुस्सा करना नॉर्मल समझ लेते हैं, मान लेते हैं, और जब कोई भी बात को नॉर्मल समझ के मान लेते हैं तो उसको निकालने की कोशिश नहीं होती है। हम सोचते भी नहीं है कि ये नॉर्मल है तो उसके ऊपर हम कोशिश ही क्यों करें। जैसे कहते हैं ना कि छोटा बच्चा अगर हैरान करता है तो उसके ऊपर तो गुस्सा करना ही चाहिए, उसको पहले तो मारने का होता था कि ज्यादा, अभी आजकल इतना नहीं होता है मारने का, लेकिन कहते हैं वो तो नॉर्मल है, उसको ठीक करने के लिए तो गुस्सा करना ही पड़ता है। लेकिन ये थोड़ी सी हमारी जो अपब्रिंगिंग और कल्चर वगैरह में एकदम थोड़ी गलत फहमी हुई है कि नॉर्मल हम उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि कोई भी बात को आप शांति से और प्रेम से ठीक कर सकते हो, शांति से और प्रेम से ठीक कर सकते हो, भले आपकी आवाज थोड़ी बढ़े लेकिन अंदर में जो इमोशन है वो गुस्सा की नहीं होगा, अथॉरिटी की होगी, अथॉरिटी की होगी। छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ, उनको अगर समझाना है करना है तो उनको ये कहेंगे कि गुस्सा, मैंने तुमको कहा ना गुस्से से कहते हैं ना, लेकिन एक बात कहना है गुस्से से, और गुस्से में हमेशा ऑफ कोर्स आवाज तो बढ़ता ही है लेकिन बिना गुस्से के भी आवाज बढ़ सकता है, जिसको हम कहते हैं अथॉरिटी ऑफ पीस, अथॉरिटी ऑफ लव। हमारे कितने हमारे सीनियर्स हैं जिनके इतने अथॉरिटेटिव हमारे हम बोलने का तरीका होता है, और कई बार हमको इशारा भी करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे हो, लेकिन हमको अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत प्यार से, अंदर में उनका प्यार है, भले बाहर से उनका रूप है हमको ठीक करने के लिए थोड़ा सा आवाज बढ़ाया होगा, लेकिन अंदर में हमको अच्छा लगता है क्योंकि उनकी अथॉरिटी जो है बहुत रियल लगती है, आउट ऑफ देयर लव दे आर एबल टू डू दैट। तो इसी तरह से हमने गुस्सा को नॉर्मल समझ करके उसको बढ़ने दिया, तो अभी बुजुर्ग जब 50-60 वर्ष के हो तो नेचुरल है कि वो गुस्सा बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, राइट। आखिर तो वही आत्मा है, उस आत्मा में ही एक एक रिकॉर्डिंग होती जाती है, बजती जाती है। एक बार गुस्सा किया, रिकॉर्ड हुआ आत्मा में, जैसे कि रिकॉर्डिंग होती है ना, हम कहते हैं ना संस्कार संस्कार संस्कार, क्या है संस्कार, कोई भी बात को आप रिपीटेडली रिपीट करो, बार बार करो और उसकी इमोशन अंदर में बैठ जाए तो उसको हम संस्कार कहते हैं, तो वो संस्कार बन जाता है। हाँ ये बात ठीक है, इससे कुछ खुरा नहीं होता है, ये मान लेते हैं, उसको फिर नॉर्मल समझ लेते हैं। तो इसी रूप से हमारी जो कल्चर है आजकल की, हमने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया कि हम बच्चे को कैसे बड़ा करें, और बच्चा में अगर गुस्सा है भी तो उसको ठीक कैसे करें, इन बातों के ऊपर हमने थोड़ा अटेंशन नहीं दिया तो नेचुरल है कि वो सब बातें जैसे कि नॉर्मल बन गई। और अभी हम कहते हैं कि जब बुढ़ापे में एक्चुअली इट इज वर्स, मतलब कि एटलीस्ट जवानी में आप कुछ तो कर सकते हो अपने गुस्से के साथ, यू कैन एक्टिवली एक्सप्रेस, और बुढ़ापे में आपको तो डिपेंडेंट होना पड़ता है उससे, कोई सुनने वाला नहीं है, मेरे को कोई नहीं सुनता है, तो फिर गुस्सा आता है, नेचुरल होता है। तो मैं समझती हूँ कि गुस्सा भी नॉर्मल नहीं समझे, लेकिन उसका कुछ न कुछ एंटीडोट समझे। गुस्से का एंटीडोट क्या है? नॉर्मल एंटीडोट, अरे नॉर्मल ना होकर के उसका एंटीडोट, उसको दूर कैसे करे? तो इसके लिए हम अपनी आंतरिक शक्ति, शांति, प्रेम, स्वरूप, इन सब का अनुभव होगा। तो मैं खुद का अपना अनुभव बताती हूँ कि पहले हमारे चलो बाहर से तो हम गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन अंदर में कभी कभी कोई कुछ करता है, बाहर से तो मान लेते थे क्योंकि मेरे को कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है, उसका झगड़ा नहीं करना है, चलो ठीक है। लेकिन अंदर में गुस्सा बढ़ता जाता था और फिर कुछ कह भी नहीं सकते हैं। लेकिन अभी राजयोग की भी अभ्यास के बाद अपना परिचय जो मिला है कि मैं कौन हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये सब अभ्यास करने के बाद एक जैसे कि अंदर में शांति की शक्ति बढ़ती जाती है, इट बिकम्स एन असर्टिव फोर्स इनसाइड ऑफ यू। तो फिर हम धीरे से रह करके उसको राइट टाइम पर कह सकते हैं, भाई साहब ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। पहले डरते थे और डर को फिर दबाया जाता था और दबाने से फिर वो गुस्से के रूप में कभी कभी और किसी दूसरे के ऊपर गुस्सा हो जाता था। ऐसा ही होता है ना, ऑफिस में तो गुस्सा नहीं कर सकते, घर में आकर के अपने घर वालों से गुस्सा जरूर करेंगे क्योंकि वहां तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो सप्रेस करने की भी पहले आदत थी, तो वो बढ़ता गया। लेकिन अभी हम समझते हैं अपनी एक असर्टिव फोर्स ऑफ पीस, जैसे है ना, अंदर में हम पैदा करें, अंदर जेनरेट करें, अंदर में मेडिटेशन में, याद में बैठ करके, रिफ्लेक्शन में अपने को समझ करके, तो फिर वो एंटीडोट है गुस्से के, एंगर के। तो इसलिए मैं समझती हूँ भले वो होता है बुढ़ापे में ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल को शब्द को हटा दें, नॉर्मल अगर समझेंगे तो वो बात चलती रहेगी।
मैं समझता हूँ दीदी, जसपाल जी को ये बात समझ में आई होगी कि बहुत बार हम लोगों को गुनहगार नहीं समझें कि भाई अगर उनमें गुस्सा हो रहा है तो ये नॉर्मल नहीं है, बट ओवर द ईयर ऑफ टाइम कोई चीज एक्यूमुलेट करते करते उनको ज्यादा लग रहा होगा। तो इसके लिए एंटीडोट हमारे पास रेडी रखने चाहिए कि क्या ऐसी चीजें हैं जो उनको हम हेल्प करने के लिए कर सकते हैं, वो चीजें सोचनी चाहिए। बट ऐसा होता है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है जिससे हम उनको मदद कर सकते हैं, जो आपने बात कही। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ, हमारे पास लगभग 10 मिनट का समय है दोस्तों, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाल लूँ। संध्या पाठक हमारे साथ जुड़े हैं, फेसबुक पे लाइव देख रही हैं प्रोग्राम को, पूछती हैं, नेगेटिव विचार नहीं जाते हैं मन से, क्या करूं, बहुत परेशान हूं, हर वक्त सोचती रहती हूं, ऐसा संध्या पाठक पूछती हैं।
नेगेटिव विचार नहीं जाते हैं मन से, क्या करूं? संध्या जी, आप क्या समझते हैं कि ये नेगेटिव विचार कहाँ से आती है, किसके मन से आती है, और उस मन के मालिक कौन है? हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा मन विचलित होता है, मेरा मन भागता है, ठहरता नहीं है, ये सोचता है, वो सोचता है। तो पहले तो हम ये सोचे कि जिसको हम कहते हैं ना मेरा मन, मेरा मन कहते हैं ना, किसी दूसरे का तो मन आपके अंदर नहीं बैठा हुआ है, राइट? तो आपका मन को कौन चलाएगा? जैसे आपका हाथ है, मेरा हाथ है, मुझे अगर हाथ ऊंचा उठाना है तो कौन ऊंचा उठाएगा? मेरा हाथ है, कौन ऊंचा उठाएगा? मुझे ही तो करना पड़ेगा ना। अच्छा चलो, नहीं हो सकता है, मेरे को थेरेपी देने के लिए कोई आया, वो अलग बात है, लेकिन आखिर भी मेरी जिम्मेवारी है ना। अगर किसी ने कहा ऐसे करो ऐसे करो, करना तो मेरा बस की बात है ना। तो हम हमेशा समझते हैं कि मन को अच्छी रीति से समझें कि मन एक हमारा जैसे कि कर्म इंद्रिय है ना, ये कर्म इंद्रिय कहते हैं, हाथ पैर आंख कान ये सब हमारे कर्म इंद्रिय हैं। अगर मैं कहूं इन आंखों से मेरे को ये पिक्चर नहीं देखना है तो कौन मुझे फोर्स कर सकता है कि ये देखना ही पड़ेगा, नहीं कर सकता है ना। तो इसी रीति से मन को भी अपना एक सूक्ष्म इंद्रिय समझना चाहिए कि मेरी एक एसेट है, एबिलिटी है जो भगवान ने मेरे को अच्छे काम के लिए दिए हैं। इसलिए मैं जो नहीं सोचना चाहती हूँ मन के ऊपर जैसे कि फोर्स करके, फोर्स तो नहीं कहेंगे लेकिन अपना जो मास्टरी है ना, अपना जो कंट्रोल है वो मैं जरूर उसके प्रति व्यस्त करूं और मेरे मन के साथ बात करूं। क्यों ऐसे विचार करता है, इससे तो कोई फायदा नहीं है। वार्तालाप करो, कॉन्वर्सेशन विद योर ओन माइंड, कॉन्वर्सेशन विद योर ओन माइंड। और मन को हम दूसरी तरीके से सोचते हैं, एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का काम क्या, 2 साल का लड़का, आप उसको कहे मन शांत हो जाओ ठीक नहीं करेगा, बैठेगा नहीं, उसको कुछ न कुछ चाहिए, सोचने के लिए कुछ न कुछ चाहिए, वो जरूर विचलित होगा और कुछ न कुछ करने के लिए उसको हाथ में कुछ चाहिए, पैर में कुछ चाहिए, कुछ खिलौना चाहिए। उसी रीत से मन को भी कुछ न कुछ चाहिए, इसलिए वो उसी चीजों के पीछे जाती है जो हम परिचित हैं, जिसका हमको परिचय है, जिसका हमें ज्ञान है, जिसका हमें अनुभव है, उसके प्रति ही जाएगा। अभी उसी मन को उन चीजों से, हमको पता है कि वो हम परेशान करने वाली चीजें हैं, तो हम मालिक बन करके उस मन के साथ थोड़ी सी अग्रीमेंट कर लें, अरेंजमेंट कर लें। छोटे बच्चों के साथ भी थोड़ा अग्रीमेंट करना होता है कि वो नहीं करो, ये करो, ये करो तो बहुत अच्छा लगेगा, तो उसको छुड़ा देते हैं। तो इसी रूप से हम क्या कहेंगे अभी कि अच्छी बातों को उनको पहले तो फीड करो मन को, क्योंकि जो फीड किया हुआ चीज है ना वो सब नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, देखते क्या है, सुनते क्या है, पढ़ते क्या है, सब नेगेटिव बातें होती है, तो नेचुरल है कि वो नेगेटिव बातें सर्कल में आएंगी। लेकिन अभी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या करना है मेरे को कि उसको पॉजिटिव चीजें फीड करनी है। जैसे मैंने पहले भी बताया, थोड़ी सी थॉट्स आती है, पढ़ के अच्छा लगा छोड़ दिया, नहीं सोचो उसके ऊपर, और एक बार पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, नहीं अच्छी अच्छी आजकल तो मैंने देखा है कि स्लोगन्स आती है और पिक्चर्स भी बहुत बड़े सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव करने की बात होती है ना। लेकिन वो सिर्फ देखने सुनने के लिए नहीं है, वो फिर हमको उठा के उसके ऊपर सोचो। जैसे मैंने कहा कि चलो कोई लेट आता है, आपकी लड़की है कॉलेज से आ रही है, लेट हो गया, 9 बज गया, 10 बजे, आपको चिंता लगी हो या सोचते रहते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, क्या हुआ होगा, कैसे क्या होगा, इसने ऐसा क्यों किया, इतना लेट क्यों किया। अब उससे फायदा तो कुछ नहीं होता, नहीं उसके बदले में आप ये सोचो नहीं ठीक ही होगी, कुछ न कुछ ऐसे अवसर पर उसको कुछ सिचुएशन ऐसा हुआ होगा, बस नहीं मिला होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि वो लेट हो रही है, लेकिन इतने में मैं उसके प्रति अच्छे थॉट्स भेजूं, पॉजिटिव थॉट्स भेजूं। अगर कुछ है भी उसको कोई तकलीफ है तो उसके प्रति गुड विशेस भेजूं, पॉजिटिव थॉट्स भेजूं, और इस रूप से उसको जैसे, और हम लोग मानते नहीं है हमारे मन की शक्ति, लेकिन मन में बहुत बड़ी शक्ति है, खास करके जिसके साथ ऑलरेडी कनेक्शन है ना, उसको हम बहुत दूर से हेल्प कर सकते हैं पॉजिटिव थॉट से और गुड फीलिंग से, प्योर फीलिंग से, शुभ भावना से। तो क्यों ना हम उसमें हमारे संकल्प चलाएं और सिवाय के ये सोचे कि उसको खराब हो गया क्या करूं, डर जाऊं, ये नहीं, एक एक बात के ट्रांसफर करो, ट्रांसलेट करो कि उसको नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे बदला जाएगा। और उसके लिए थोड़ी सी हमको रॉ मटेरियल चाहिए होगी, स्पिरिचुअल रॉ मटेरियल, जिसको हम स्पिरिचुअल ज्ञान कहते हैं, नॉलेज कहते हैं, जो हमारे फिर सारे अभ्यास मेडिटेशन के बेसिस बन जाती है राजयोग की शिक्षा में। तो उसी तरह से जितना हम फीड करेंगे थोड़ी थोड़ी बात में, जैसे कि अपने साथ अच्छी तरह से बात करना सीखो मन के साथ, जैसे कि अच्छे जेंटली, फोर्स नहीं करो, फोर्स नहीं करता है, प्यार से उनको सिखाओ, जैसे कि एक बच्चा है उसको सिखा रहे हैं और प्यार से सीखता भी है बच्चा, फोर्स से नहीं सीखता है। हमारे मन के साथ भी हमको ऐसे ही ट्रीट करनी चाहिए, राइट?
बहुत ही सुंदर बात आपने कही दीदी कि हम अपने आप से भी कैसे बात करते हैं। बहुत बार हम अपने आप को फटकार लगाते हैं, अपने आप को सप्रेस करते हैं, गिल्ट, शेम और न जाने क्या क्या चीजें हम अपने आप के साथ करते हैं, और ये सही नहीं है। अपने मन से भी हम प्रेम से बात करें, जैसे आपने कहा कि हम छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं, उसी प्रेम के साथ हम अपने से बात करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों, मैं सारे प्रश्न ले नहीं पाऊंगा क्योंकि समय की सीमा समाप्त हो रही है, हम 55 मिनट एक्सीड कर गए हैं। मेडिटेशन के लिए भी हमको थोड़ा सा समय चाहिए, तो इसके लिए आज जो प्रश्न मैं नहीं ले पाऊंगा, सत्येंद्र जी ने प्रश्न पूछा है, मरिया जी ने प्रश्न पूछा है, कुछ और दोस्तों के प्रश्न है जो मैं आज नहीं ले पाया, उनको मैं कल के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करूंगा। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप पहले से हमें भेज सकते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को आप हमें पहले से ईमेल कर सकते हैं socialmedia@brahmakumaris.com पर भी, और उन प्रश्नों को हम पहले से भी अपने मेडिटेशन मास्टर्स ऑफ मेडिटेशन से हम पहले पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके सभी सवालों के लिए दोस्तों, आज आपने बहुत सारे अच्छे सवाल पूछे दीदी जी से, हमने मार्गदर्शन लिया और बहुत ही अच्छी बातें निकल के आई जो आज हमें करने के लिए मिली है। और जो अभी अभी आखिरी बात जो हमने सुनी है, वो चीज तो मैं समझता हूँ मैं हर किसी को प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है कि हम पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करें, कुछ अच्छा पढ़ें हर दिन, अपने आप के साथ अच्छी बातें करें, प्यार से बात करें, किसी गलत चीज को नॉर्मल नहीं समझें, हो जाता है चीजें, बट ये ऐसी बहुत कुछ अच्छी चीजें निकल कर आई है। मैं समझता हूँ आप सब इन चीजों को यूज कर पाएंगे। आप सभी की तरफ से मैं डॉक्टर कला अय्यंगार जी का धन्यवाद करता हूँ कि डॉक्टर कला खास हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स से आज हमारे साथ जुड़े, हालांकि उनके लिए सुबह का वक्त है, मगर फिर भी हमारे लिए टाइम एडजस्ट करके डॉक्टर कला हमसे सुबह सुबह मिल रहे हैं अमेरिका से जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कला।
हमारे भी बहुत बड़ी भाग्य है कि हमको सभी से मिलने को ये मौका मिला और लेन देन करने का अच्छा अवसर मिला। हम भी हमेशा जब भी प्रोग्राम करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि जितनी सिंसियरिटी से व्यूअर्स प्रश्न पूछते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, हमें लगता है कि सचमुच ये वो समय चल रहा है जबकि सारे ही दुनिया भर के परिवर्तन होने का समय बहुत ही नजदीक है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ पॉजिटिव ट्रेंड। तो आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से, और श्री दीपाई को खास ये प्रोग्राम चलाने के लिए और आज के प्रोग्राम के लिए खास हमको निमंत्रण देने के लिए। थैंक यू
सो मच दीदी। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर दिन जो हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ते हैं, उन्होंने अपने लाइफ में मेडिटेशन को काफी लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट किया है, एक्सपीरियंस किया है और बहुत लोगों को गाइड किया है, तो ऐसे में हम चाहते हैं कि आपके साथ मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हमारे सभी दोस्तों को मिले। तो अगले 3-4 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेडिटेशन में गाइड करें हमारे दोस्तों को।
ओम शांति। सभी थोड़ा आराम से बैठ जाएं, लेकिन अपने शरीर को सीधा रखें, अलर्ट होके बैठें। और अगेन, मेडिटेशन को मेडिटेशन ना समझ करके एक अपने लिए जैसे कि पर्सनल टाइम दे रहे हैं, जिसको आजकल लोग कहते हैं मी टाइम, ये समय सिर्फ मेरे लिए है। सारा ही समय बाहर की बातों में, स्थूल बातों में, दिन ब दिन की बातों में चली जाती है, तो जीवन के जो मुख्य सब्जेक्ट है, अपने को जानने की, अपनी उन्नति करने की, वो रह जाती है। ये थोड़े मिनट हम ये सोचें आंतरिक मेरी दुनिया है, उसमें जो संकल्प आशाएं इच्छाएं भावनाएं होती है, उनको मैं अच्छी तरह से शुद्ध बनाऊं, अगर कोई भी बात दिन भर की मेरे अंदर रह गई हो सेकंड में उसको दूर करके मेरे जो ओरिजिनल गुण है वास्तविक नेचर है आत्मा की उसके प्रति सोचूं, मैं आत्मा एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति और मुझ आत्मा में कई तरह के गुण शांति के गुण प्रेम के गुण धैर्यता दृढ़ता जैसे कि मेरे अंदर एक सारा बगीचा है तरह तरह के फूलों का सुगंधित फूलों का जब मैं बाहर के दुनियावी बातों में खो जाती हूं तो ये जैसे कि मैं जंगल में चल रही हूं इस बगीचे को भूलकर थोड़े मिनट के अंदर जो मुझे ये अनुभव हो रहा है कि मैं सचमुच गुणों की मूर्त हूं उन गुणों के सुगंध को मुझे बाहर तक पहुंचाना है जंगल के कोने कोने में और मेरा ये खुद का स्वमान रहे बीच बीच में सारे दिन में अपने आप को मैं याद करूं मैं कौन हूं मेरे में कैसे कैसे गुण हैं सुगंध फैलाऊं मेरी दृष्टि से मेरे बोल से मेरे कर्म से सबको ये सुगंध महसूस हो ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।